भोजन करना नहीं है, उसे चबाना और उसे पचा करके उसका रस बन जाना और पूरे शरीर में वो रक्त बन करके प्रवाहित हो जाना, ये कहलाएगा कि हाँ आपने भोजन किया है। ठीक इसी तरह ज्ञान का भी है कि जब वो हमारे हृदय का अंग बन जाए, जब वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, तब वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। हम इन दिनों निरंतर अपने ही जीवन के विकास के बारे में बहुत सारी बातें जान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इन सब की कसौटी क्या है, यही कि कितनी बात हमारे अपने जीवन में हमने उतारी है। क्योंकि जीवन में जितनी बात उतरेगी उतनी अधिक कर्मों की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। और हमें करना क्या है, करना यही है कि जो कर्म हमने बांधे हैं अज्ञानता बस बांधे हैं, ज्ञान के द्वारा उन कर्मों को हम काट लेवें, उन कर्मों से हम पृथक हो जाएं। हमने अपनी अज्ञानतावश बहुत सारे बुरे कर्म बांधे हैं, जिनमें से एक है मिथ्यात् दर्शन मोहिनी कर्म है, जो हमारी अज्ञानता से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम इन दिनों क्या समझ रहे हैं, उस दर्शन मोहिनी को कैसे तोड़ें, इसकी भूमिका बना रहे हैं। अभी सिर्फ भूमिका बनी है, वो कब टूटेगा, टूट गया तो पता लग जाएगा ये भी नहीं कह सकते, पर वो दर्शन मोहिनी तोड़ने के लिए भूमिका क्या बनाने पड़ेगी, तो मंद कषाय की भूमिका बनाना पड़ेगी, सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य लेना पड़ेगा और उन सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में बैठकर सात तत्वों के स्वरूप का अभ्यास करना होगा और उस अभ्यास में से ये समझना होगा कि मेरा आत्म तत्व कैसा है, ये जो आत्मा है उसका स्वभाव क्या है, और उस स्वभाव के विपरीत जो भी हैं वे सब मेरे नहीं हैं। इस प्रकार अपने भीतर जब पर पदार्थों से रहित होकर के अपने ही आत्मा में रुचि होती है, तब कहना कि भूमिका बन गई। अब भीतर ऐसी बाहर में भूमिका बनने पर भीतर क्या होता है, तो भीतर इसी को अपन कहते हैं कि कर्मों का क्षय स्वयोपशम या उपशम होने लगा। उपशम की परिभाषा दी है कि परिणाम विशेष के द्वारा जब हम कर्मों के आने वाले उदय को कुछ समय के लिए रोक देते हैं उसे उपशम कहते हैं। आज हम इस तरह समझेंगे क्योंकि अब हमें आचार्य भगवंत बहुत बारीक बात समझाना चाह रहे हैं, जो हमारे भीतर घटित होती है बाहर से हम उसका कोई हिसाब किताब नहीं बना। हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है, हमें सात तत्वों का स्वरूप मालूम है, जैसा भगवान ने कहा वैसा हमको श्रद्धान है, इसके बाद कहते हैं कि ये तो बाहर का काम कर लिया, भीतर इसकी वजह से ऐसी भूमिका बनने से क्या काम होता है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसी को अपन करणानि योग की दृष्टि कहते हैं। अब उस दृष्टि से समझते हैं कि भीतर करण का अर्थ है परिणाम। हमारे परिणामों में जैसा बाहि में परिवर्तन हुआ है उससे भीतर भी परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर बाहर तो परिवर्तन हुआ और भीतरी परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज वो चीज क्या परिवर्तन होना चाहिए, भीतर में कर्मों की स्थिति और अनुभाग क्षीण होता चला जाता। जैसे जैसे बाह्य में दृष्टि में निर्मलता आती है, इतना ही मोटा हिसाब समझना कि जो संचित कर्म हैं और उसमें से जो पाप कर्म है विशेष रूप से मिथ्यात्व है, वो दृष्टि की निर्मलता से क्षीण हो जाता है। कभी कभी हम उसके उदय को कुछ समय के लिए रोक देते हैं, आने नहीं देते हैं, तब हमारी जो परिणामों की निर्मलता होती है उदय के अभाव में, उसे कहते हैं उपशम सम्यक दर्शन। जब हम अपने कर्मों को अपने सत्ता से भी समाप्त कर देते हैं, जो कर्म हमारी निर्मलता में बाधक थे, तब हमारे अंदर जब वो कर्म ही नहीं रहे जिनसे हमारी निर्मलता खराब होती थी, विकृति आती थी, हमारी दृष्टि ठीक नहीं रह पाती थी, तब वो कर्म हट गया, तो कहते हैं ये क्षायक सम्यक दर्शन है। और अगर क्षय और उपशम दोनों की मिली जुली स्थिति है,
गुणों का आंशिक रूप से प्रगटीकरण होना श्रेयोपशम कहलाता है। श्रेयोपशम की और भी परिभाषाएं हैं भैया, लेकिन अपन के समझने के लिए गोमठ सार जी में बड़ी अच्छी सीधी परिभाषा दी, गुणों का आंशिक रूप से प्रकट होना ये श्रेयोपशम कहलाता। अपन नहीं कह देते कि भैया हम अज्ञान को श्रेयोपशम कम है, कम है अर्थात हमारे जो ज्ञान गुण हैं वो कमती प्रकट है, ढका ज्यादा है, प्रकट कम हुआ है। तो कहते जितने जितने हमारे गुण प्रकट होते जाते उतना उतना वो श्रेयोपशम कहलाता है। इस तरह ऐसे ही दर्शन मोहिनी का भी हमारे भीतर क्षयोपशम है या कि उपशम हुआ है। क्षय तो आज के समय में होता ही नहीं है, क्योंकि क्षय के लिए बाह्य कारण चाहिए, किसी केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए, तब जाकर के हमारी परिणामों में इतनी निर्मलता आएगी कि हम अपने ही जो बांधे गए दर्शन मोहनी या मिथ्यात्व कर्म है उसे हमेशा के लिए तोड़ पाएंगे। पर वह ससानिध्य नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर किसी को सम्यक दर्शन होता है तो उपशम सम्यक दर्शन होता है। जो हमारे भीतर कर्म प्रकृतियां पड़ी हैं वो कर्म प्रकृतियां कुछ समय के लिए उपशांत हो जाती हैं, जैसे कि कीचड़ भरा पानी हो और उसमें फिटकरी डाल दी तो क्या होता, वो कीचड़ जो है पानी में से नीचे बैठ जाता है। अब जब तो पानी कैसा हो गया, ऊपर ऊपर का निर्मल हो गया, लेकिन अभी भीतर तो उसके गंदगी पड़ी है, तो अंतर्मुहूर्त के बाद फिर वो पुनः उदय में आ जाता है। उपशम सम्यक दर्शन के साथ यही है कि अंतर्मुहूर्त को रहता है, उसके बाद पुनः प्रकृति का उदय आ जावे तो सम्यक दर्शन गड़बड़ा सकता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन में ये है कि जैसे कोई बच्चा आया और उसने उस पानी को थोड़ा हिला दिया तो नीचे थोड़ा जमा भी है और थोड़ी मिट्टी पानी में घुल भी गई, ये ऐसी मिली जुली स्थिति है ये क्षयोपशम की। इसका काल बहुत है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन 66 सागर काल तक जो है रह सकता है। इतने समय तक तो आज के समय में हम चाहें तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन तो अपना बना ही सकते हैं, और शायद सम्यक दर्शन तो पहले ही अपन ने समझ लिया कि वो नहीं होता। अब ये बात है कि हमारे भीतर अगर कर्मों की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है तो ही हम मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। बाहर से देखने में सच्चे देवगुरु शास्त्र की जिसकी श्रद्धा है सो वो मोक्ष मार्गी है, ये अपन इतने दिन से समझते आ रहे हैं कि हमारी अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा है और हम वीतरागी के अलावा और किसी को नहीं मानते हैं, भगवान और गुरु और देव शास्त्र नहीं मानते हैं, इतने से हमारा काम चल जाए। लेकिन अगर भीतर परिणामों की अपेक्षा देखें तो कर्मों की स्थिति और अनुभाग में अगर परिवर्तन आया है तो ही हम वास्तव में मोक्ष मार्गी कहलाएंगे, वरना मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएंगे। जब टोडरमल जी से पूछते हैं कि चौथे गुण स्थान में जो अविरत सम्यक दृष्टि है क्या वो मोक्ष मार्गी है, तो क्या जवाब देते, अबार कौनी आगे होसी निर्धार भया, अभी नहीं है आगे होगा ये बात तय हो गई पर अभी मोक्ष मार्गी नहीं है। तो कहते सम्यक दर्शन तो हो गया और मोक्ष मार्गी नहीं है, तो कहते सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान तो अपने आप हो जाता है पर आचरण बुद्धि पूर्वक ग्रहण करना पड़ता है। आगे इसी ग्रंथ में जाकर के कहेंगे जब हम व्रत नियम संयम बुद्धि पूर्वक, अपने आप नहीं हो जात व्रत नियम संयम भैया, सम्यक दर्शन के बाद बुद्धि पूर्वक व्रत नियम संयम जब अंगीकार करते हैं तब मोक्ष मार्गी वास्तव में कहलाएंगे। पर अकेले सम्यक दर्शन हो जाने पर भी मोक्ष मार्ग जहां मान लिया है तो वहां पर आशय यही समझना कि मोक्ष मार्ग अब प्रारंभ होने को है, इसलिए हमने चौथे गुण स्थान में भी मोक्ष मार्ग मान लिया। आज अपन को यही बात यहाँ पर समंतपत्र स्वामी करणाने योग की कसौटी पर कस करके अपने सम्यक दर्शन को देखना, अपनी श्रद्धा को देखना, उसकी बात बताते हैं। बड़ी कहना चाहिए पूरे 150 श्लोकों में सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा कठिन व्याख्या अगर है तो इस 33वें श्लोक की है। इसमें गड़बड़ होने में ज्यादा देर नहीं होती है। हम सब जो है अपने उपादान की दृष्टि से बहुत कमजोर हैं, ये गाथा हमारे लिए उत्थान में भी निमित्त बन सकती है, और इस गाथा का ठीक अर्थ नहीं लिया
तो ये हमारे पतन में भी निमित्त बन सकती है। देखने में अभी तक यही आया है कि ये श्लोक ठीक अर्थ न लिए जाने से पतन का ही कारण बना है। लिए हुए व्रत नियम संयम भी लोगों ने छोड़ दिए हैं, ऐसी व्याख्याएं इसकी होने से, और इतने नहीं जो मुनि मार्ग है उसके प्रति भी लोगों के मन में उतनी श्रद्धा नहीं रही है, इसके ठीक अर्थ न करने की वजह। बड़ी सावधानी का काम है भैया, इसमें बहुत अच्छा लगेगा इसका अर्थ सुनते समय, और उस अर्थ में ही अगर अपन फूल गए तो समझ लो कि जहां हैं सो उतर के भी नहीं रहे और नीचे तो गिरे। ये इसका इसलिए हमने पहले उसको बता दिया कि अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले लगेगा कि बहुत अच्छा, हम तो पहले ही सोच रहे थे कि अपन ने जो सब कछु नहीं करो सो अपन अच्छे हैं, हाँ ऐसा लगेगा मन में। और ऐसी तो अपन ने ऐसी व्याख्या भी अपन ने सुनी हुई है कि ऐसे तो पिछी कमंडल इतने ले लिए कि सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लग गया होगा, पर अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत विरिया पद पे सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। सुबह दुर्लभ निज में मुनि साधो, एक ही व्याख्या नहीं, ऊपर की व्याख्या अच्छे से कर ली कि मुनि व्रत धार अनंत वार गई वक्त, बस ये कई लाइन में बड़ा मगन हो जाता चित्त कि बहुत अच्छा रोपन नहीं बने, बन जाते तो जा लाइन अपने पे लागू हो जाती कि मुनि व्रत धार अनंत वार गई वक्त उपजायो, ऐसा लगने लगेगा मन में। देखो इसको ये नहीं समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप गलत हैं या कि कोई व्याख्याकार गलत है, व्याख्याकार की गलती भी नहीं है ज्यादा, व्याख्याकार भी क्या करे, जो बात जैसी है उसको कैसे कहना है ये भी बहुत मुश्किल है। अगर किसी के ज्योति जानकार है और किसी के हाथ में हृदय रेखा नहीं है तो ज्योति को काम है कि वो जाने के बाद तुम्हारी हृदय रेखा नहीं है, अब हृदय रेखा है नहीं हो तुम और कह दो हार्ट फेल हो जाए उनको जी, हमें गुंजाए जी। इतने व्याख्याकार की बहुत बहुत मुश्किल है, उसको सावधानी की श्रोता किस प्रकार का है, क्या अर्थ ले लेगा इसका, तो ऐसा सुनकर के लगता है कि अच्छो भाव के मुनि नहीं बने, जबकि लगना ये चाहिए कि देखो मुनि बनने के बाद भी और अगर हमने अपने परिणाम नहीं संभाले तो देखो क्या स्थिति बनती, और अपन तो गृहस्थ हैं, अपन का अपने परिणाम संवार पे हैं, मुनि महाराज नहीं संवार पाए तो अपन कैसे संवार पे, ऐसा मन में नहीं आएगा अपन को, ऐसा आएगा कि वो मुनि बन तो जाते मनो परिणाम थोड़ी समर्थ, अपन तो ठीक है अपन नहीं बने। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, दोनों व्याख्याओं में एक व्याख्या हमें ऊपर उठाने के लिए प्रेरित कर रही और एक व्याख्या हमें जहां है वहीं पर संतुष्ट कर रही है। हमारे आचार्य भगवंतों का उद्देश्य ये नहीं था, हमारे आचार्य भगवंतों का उद्देश्य था कि ऊपर उठो, लेकिन ऊपर उठो तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है, गिरवे को डर ज्यादा है, जाए समझा रहे या नहीं कह रहे कि तुम गिरवे के डर से ऊपर ही नहीं उठो या गिरने के डर से चलो ही मत, चलो लेकिन सावधानी रखना चलने वाले के लिए कहते, जैसे कबीर दास ने लिखा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, अब ऐसा लिख दिया तो उनको लगा कि जितने जे गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं इनने अपनो मन नहीं रंगा हुआ कि कपड़ा है रंगा है सपन को बे नहीं रंगाऊंगे, ऐसा अर्थ लेना चाहो तो ले सकते, लेकिन वो साधु को कान पकड़ रहे हैं कि तुमने गेरुआ रंग के कपड़ा पहन ला सो सावासी तुम्हारे लिए, इस बात के तो बहुत धन्यवाद है, लेकिन भैया जैसे तुमने कपड़ा केसरिया करे ऐसो मन सोई भगवान के रंग में केसरिया में रंग जातो तो क्या बात थी, सोने में सुहागा हो जाता, ये कहना चाह रहा व्याख्याकार। और अपन उस व्याख्याकार से ये ले ले में कि अच्छो भाव अपन ने तो रंगाई नहीं कपड़े नहीं रंगा, बस यही इस श्लोक की विशेषता है कि इसका जैसा अर्थ निकालना चाहो भैया वैसा, लेकिन अपन हमने पहले कहा कि ज्ञान काहे के लिए है, ज्ञान मेरे जीवन के कल्याण के लिए है, मुझे उसके माध्यम से ये देखना है कि इसमें मेरा कल्याण है कि नहीं। जब भी किसी के बारे में सुनो, मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपने जीवन के बारे में स्वयं इस बात को सोचता हूँ, जब भी किसी की बुराई सुनो तो सबसे पहले मन में क्या आना चाहिए, दया का भाव आना चाहिए कि अरे वो जो दोषी है उसके प्रति तो दया करूं ही, ये जो उसके दोष देख रहा है ये भी दया का पात्र है, अभी इसकी दृष्टि में निर्मलता नहीं आई है, जो कि स्वयं अपने दोष नहीं देखता है दूसरे के दोष दिखाई पड़ते, और दूसरे में दोष अगर खुद को भी दिखाई पड़ जाए तब भी उसमें दया आना कि इसने इतना तो पुरुषार्थ किया पर ये कमी कैसे रह गई कि ग्यारहवें गुण स्थान तक उपशम श्रेणी चढ़ करके पहुंचा और परिणामों की ऐसी स्थिति के सीधे आकर के अनंतानुबंधी के उदय में वो मिथ्यात्व में चला। अरे भारी विचित्रता है संसार की, ऐसा विचार करके अपने परिणाम को संभालना ये तो है ज्ञान का काम और अपने परिणाम और बिगाड़ लेना भैया ये सयाना काम नहीं है, ये इसमें तो हमारा ही अहित है। वही इस गाथा में भी, इस श्लोक में भी अपने को सावधानी रखनी पड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा है कि इतनी बात पहले से बतानी पड़ी, ऐसा है श्लोक। देखो अभी आएगा मजा आपको, आज तो आप ही का है राज इस श्लोक में तो पूरा। अपन तो जो है थोड़े एक ही है, थोड़े ऊंचे जरूर बैठे हैं, मगर इस कसौटी पर अगर कसेंगे तो हो सकता है कि हम भी खरे ना उतरे और हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति भी खरा उतर जाए। इतनी बड़ी बात आचार्य समंतभद्र स्वामी, हमें अपने धर्म पर गौरव होना चाहिए कि हम जो है बाह्य चीजों को नहीं देखते, हम व्यक्ति को नहीं देखते हैं, चाहे कैसा भी हो हम उसके भीतर छुपे हुए गुणों को प्रणाम करते हैं और उन गुणों का ही हम अपने भीतर भी विकास करना चाहते हैं। वरना अपने ही हाथ से और अपने बारे में अपनी कसौटी देना ये तो बहुत कोई महापुरुष का ही काम है। जो खुद कहे कि मुझे आप कसौटी पे कस के देख लेना अगर ठीक हो, ये तो सोना ही कह सकता है कि मुझे कसौटी पर कस के देख लेना, क्योंकि उसे विश्वास है कि सोना है, कसे जाने पर भी वो तो और निखार ही उसमें आएगा, उसमें कमी नहीं आ सकती। ऐसा ये श्लोक है। क्या कहते हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अंगारो ग्रही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुनेह, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अंगारो ग्रही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुने। थोड़ा अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा मोटा मोटा। क्या कह रहे हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो, जो निर्मोही गृहस्थ है वो मोक्ष मार्गी है। नैव मोहमान अनगारो, और एक मुनि जो मोहवान है वो मोक्ष मार्गी नहीं है, इसलिए मुनि से मोक्ष मार्गी गृहस्थ श्रेष्ठ है। लो भैया ये इस श्लोक का अर्थ हो गया। कैसा लगा, थोड़ा मन तो हुआ होगा अपने आपको शाबाशी देने का कि देखा अपन गृहस्थ होकर के भी मोक्ष मार्गी हैं। बहुत अच्छी बात है, गृहस्थ होकर के भी कोई मोक्ष मार्गी हो सकता है, ये आश्वासन तो मिल गया। इतना तो अब कैसे हो सकता है, सो एक ही शब्द कह दिया, निर्मोह हो। अगर वो निर्मोही हो, अगर उसने अपने दर्शन मोह को उपशमित या कर लिया है या क्षय कर दिया है, उसके दर्शन मोह का क्षयोपशम हो गया है, तो ऐसा गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। कितनी बड़ी बात जो है, एक गृहस्थ के जीवन में भी मोक्ष मार्ग आ सकता है, उसके लिए समंतभद्र आचार्य ने कहे। और कहते आगे कि नैव मोहवान अनगारो, और लेकिन अगर कोई एक मुनि बन करके भी बाह्य में पंच महाव्रतों का पालन करते हुए भी अगर भीतर में अपने दर्शन मोहनी कर्म का क्षय उपशम या क्षय उपशम नहीं कर पाया है, तो अभी वो मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिए जिसने अपने दर्शन मोहनी का क्षय उपशम और क्षय उपशम कर लिया है, ऐसा गृहस्थ अधिक श्रेयस्कर है मोही मुनि की अपेक्षा से। मुनि महाराज जी का कान पकड़ लिया, गृहस्थ की पीठ थपथपा दी, हाँ ऐसा लगने लगेगा। तो कहते ऐसा बाह्य में लग सकता है, लेकिन अंतरंग परिणामों में देखें तो जिसने ज्यादा पुरुषार्थ किया है उसी की पीठ थपथपाई कि तुमने अपने मोह को जीत लिया, और कान किसका पकड़ा गया, जिसने अपने मोह को नहीं जीत पाया। मुनि और श्रावक तो बीच में अपन ने बाह्य में देख लिया है, वास्तव में देखें तो एक आत्मा जो कि निर्मोही है उसको तो अपन श्रेष्ठ मानेंगे ही, और एक आत्मा जो अभी अपने दर्शन मोह को नहीं समाप्त कर पाई है उसे क्या मानेंगे, अभी उसे और पुरुषार्थ करना है, यही तो अपन कहेंगे। अगर आत्मा की अपेक्षा देखें तो दो ऐसी आत्माएं हैं, एक ने दर्शन मोह का क्षय उपशम और क्षय उपशम कर लिया, एक नहीं कर पाई है, तो कौन श्रेष्ठ है? जिसने कर लिया है वो श्रेष्ठ है, चाहे वो गृहस्थ भी क्यों ना हो, ये इसका सीधा सा तात्पर्य है। एक गृहस्थ भी अपने जीवन में गृहस्थी को चलाते हुए, अब भैया अपनी गृहस्थी को जंजाल ने कहियो अभी के पड़वे के बाद, जंजाल तो तब होते है जब हम उसमें अटक जाते, और जंजाल नहीं है अगर हम उसमें से धीरे से कहते खुलक के निकल गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है इसका मामला, बिल्कुल आसानी से निकल सकते हैं। अपनी श्रद्धा को अगर हम मजबूत रखते हैं तो उसी श्रद्धा के द्वारा हमारे भीतर का दर्शन मोह एक बार अगर क्षयोपशम और क्षयोपशम को प्राप्त हो गया तो हमारा संसार तो थोड़ा सा रह गया, पार हो ही गए। अपन भले ही गृहस्थी में हैं लेकिन अब संसार से पार होने का रास्ता मिल गया, हम मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए, ये बात इतनी बड़ी। और उधर जो है अगर मुनि महाराज की अपेक्षा कहा है तो यही कि बाह्य में तो आचरण अंगीकार कर लिया, ध्यान रखना चरणानुयोग की अपेक्षा से तो वे पूज्य हैं, यहाँ पर पूज्यता का विचार नहीं करना। यहाँ तो जो मुनि पद पर बैठे हैं भले ही उनके दर्शन मोहनी कर्म का क्षयोपशम और क्षयोपशम कुछ नहीं हुआ है, फिर भी वे पूज्य हैं, उन्हें प्रणाम तो हम करेंगे, यहाँ पर वो वाली चीज नहीं लगाना, क्योंकि करणानुयोग से हम थोड़ी जान सकते कि भीतर अभी उनके क्षयोपशम और क्षयोपशम हुआ कि नहीं। इसलिए वाही में अगर उन्होंने जिनेन्द्र भगवान का वेश धारण किया है तो पूज्यता तो उनके पास है, लेकिन अभी उन्हें संसार से पार होने में देर लगेगी। वनस्पत एक गृहस्थ के जिसने अपने को सम्यक दर्शन से युक्त कर लिया है, आप मेरा आशय आचार्यों का आशय इतना ही स्पष्ट समझिएगा, पूज्यता में कोई फर्क नहीं आया है, पूज्य तो अभी हैं, लेकिन कह ये रहे हैं कि भीतर जो उनके परिणामों में अभी कर्म पड़े हुए हैं इससे उनका मोक्ष मार्ग अभी क्लियर नहीं हुआ है। और ध्यान रखना वर्णी जी जो है इसी व्याख्या को किस तरह करते थे, कहते हाओ भैया अगर उलझे हुए मुनि को सुलझे हुए गृहस्थ का उदाहरण दिया है तो ध्यान रखना उलझे हुए गृहस्थ को सुलझे हुए पशु का भी उदाहरण दिया। हाँ उलझे हुए मुनि को अगर सुलझे हुए गृहस्थ का उदाहरण दे के लाइन पे लाए हैं तो उलझे हुए गृहस्थ को सुलझे हुए पशु का उदाहरण दिया है कि एक पशु भी अगर सुलझा है अर्थात उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो तुम धरे रहो अपने सात तत्व के स्वरूप का अच्छा ज्ञान, कुछ नहीं होने वाला, वो सम्यक दृष्टि वो निकल के आगे। ये तो बिल्कुल ऐसा समझो कि बच्चे दौड़ में शामिल हुए हैं तो अपन क्या करते, देखो वो निकल गए आगे, तुम रह गए पीछे, दौड़ो और तेज दौड़ो। आगे बढ़ाने के लिए है ये भाव कि देखो तुमने इतना सब कुछ किया, और अगर कोई थोड़ा बड़ा हो लंबा हो और उसके साथ छोटा बच्चा दौड़ रहा हो तो क्या कहते, देखो तुम इतने बड़े इतने लंबे हो करके और वो देखो तुमसे आगे निकल गया। बस यही भाव आचार्यों का यहाँ है कि देखो तुमने मुनि बने, बाह्य में पांच महाव्रत अंगीकार किए, तुमने जिनेन्द्र भगवान का वेश धारण कर लिया, देखो वो तुमसे आगे निकल गया, वो अभी गृहस्थ थे, उसने अपने मुंह को जीत लिया, उसने अपने दर्शन मुंह पे विजय पा ली, और तुम अपने दर्शन मुंह को कहां कहां रह गई तुम्हारे ग्रंथि, तोड़ो जल्दी से और आगे बढ़ो, तुम उससे आगे निकल सकते हो। तुमने अगर दर्शन मुंह को जीत लिया तो चारित्र तो तुम्हारे पास है ही, उस ज्ञान और चारित्र और आचरण से अंतर मुहूर्त के भीतर तुम तो उसके भी पहले मोक्ष पा सकते हो, क्योंकि ये पद उसी मोक्ष के लिए था, इसमें कहां कमी रह गई, इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके लिए इशारा नहीं कर रहे हैं कि कोई दीनहीन हो जाए और कोई अहंकार कर दे, मुनि इस बात को सुन के दीनहीन ना हो बल्कि अपने पुरुषार्थ को जागृत करे, और श्रावक इस बात को सुन करके अहंकारी ना हो बल्कि अपने पुरुषार्थ को और बढ़ा करके, और जब सोचे कि जब गृहस्थ में रह करके मैं मोक्ष मार्गी हो गया तो अरे अब तो जल्दी से मैं मुनि बन करके और इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ के मोक्ष पा ही लूंगा, उसके लिए ये संदेश है। देखो कितना अच्छा इसका संदेश है अगर अपन ऐसा लें तो। और भैया दूसरा तो हम पहले ही बता चुके, वैसा लेकर के और अपना और संसार बढ़ाना हो तो वैसा अर्थ भी ले सकते हैं ना, कितनी गुंजाइश इस श्लोक में, जैसा अर्थ लेना चाहे वैसा अर्थ तो सीधा लिखा हुआ है। पर हमें इससे संदेश क्या लेना है, यही लेना है कि हमारा ज्ञान और आचरण हमारे पास अगर है और दृष्टि में निर्मलता नहीं है तो वो ज्ञान और आचरण कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए जल्दी करो, ज्ञान और आचरण के माध्यम से अपनी दृष्टि की निर्मलता कर लो ताकि तीनों मिल जाएंगे तो हम जल्दी से मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे। वैसे तो चार इस श्लोक से कहीं भी ये नहीं समझना कि चारित्र की यहाँ पर अवमानना हो गई है। इतने बड़े मुनि महाराज को कह दिया कि आप श्रेष्ठ नहीं है, गृहस्थ श्रेष्ठ है। तो किसको कह दिया, मुनि से गृहस्थ को श्रेष्ठ नहीं बताया बल्कि मोही से निर्मोही को श्रेष्ठ बताया है, ऐसा आशय लेना इसका। श्रावक के लिए तो साधु श्रेष्ठ है ही क्योंकि जिन लिंग को अंगीकार करे हुए है, कम से कम वाही में उस मुद्रा को तो धारण किया है जो भगवान ने की थी, इतना पुरुषार्थ तो किया, भीतर कोई घुंडी रह गई, कोई ग्रंथि रह गई है अपने ही परिणामों की वजह से, उसे तोड़ना आवश्यक है। तो और एक बात कहते थे वर्णी जी के, देखो भैया तुम्हारी शोहोपयोग और शुद्धोपयोग की चर्चा से ज्यादा अच्छे वे घासोपयोगी हैं। घासोपयोगी कहते थे पशुओं को, तुम अपने शुद्धोपयोग शोहोपयोग की चर्चा ही में लेके भी अपनी घास खा करके और सम्यक दर्शन प्राप्त करके और आगे बढ़ रहे हैं। पंचम काल में देवों की पूर्ति कहां से होगी मालूम, स्वयंभू रमण के तिरंच जीवों से देवों की पूर्ति होनी है और यहाँ के मनुष्यों से तो होनी है पूर्ति नरक की, ऐसा लिखा। सो अपना नाम उसमें नहीं लिखाना अपन को कि अपन को भी नरक जाना पड़े। और एक जगह तो लिखा कि नरक भी जाना पड़े तो कछु हर्जा नहीं है, सम्यक दर्शन लेकर के जाएंगे। और देव भी नहीं होना हमें, देवों का अधिपति भी नहीं होना मिथ्यात्व के साथ, ऐसा भी है। यहाँ पर विशेषता किसकी बताते हैं, यहाँ पर विशेषता सम्यक दर्शन की है। यहाँ जिसने अपने दर्शन मोहिनी को जीत लिया है वो यहाँ विशिष्ट है। जब आगे अपन आएंगे तो ज्ञान की भी प्रशंसा करेंगे और चारित्र की प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन अभी मुख्यता हम किसको दे रहे हैं, सम्यक दर्शन को मुख्यता दे रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दर्शन के साथ जो आचरण है वो श्रेष्ठ है, अकेले सम्यक दर्शन से भी काम पूरा नहीं बनने वाला है। शुरुआत तो हो सकती है लेकिन पूरा तो चारित्र के माध्यम से ही होगा, मुख्यता तो उसी चारित्र की है। बाह्य वेश जो ज्ञान और बाह्य वेश है अगर वो सम्यक दर्शन के बिना है तो कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं बनता। इसलिए आचार्य भगवंत ने हमें कर्मों की निर्जरा के लिए जो सम्यक दर्शन आवश्यक है उसकी बात कही। वैसे तो देखा जाए तो एक सम्यक दृष्टि अपने तत्व चिंतन के काल में जितनी कर्मों की निर्जरा करता है उससे असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा एक देशव्रति श्रावक भोजन का विकल्प करते भोजन करते समय कर लेता है। और एक देशव्रति श्रावक सामायिक के समय पर तत्व चिंतन में जितनी कर्मों की निर्जरा करता उससे असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा एक मुनि महाराज भोजन करते समय आहार लेते समय कर लेते हैं। सो तो कर्मों की निर्जरा की व्यवस्था यही जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोटल मल जी ने लिखी, वहीं पर उन्होंने ये लिखा है कि ये नहीं समझना कि सम्यक दर्शन अकेले से असंख्यात गुनी निर्जरा होगी। सम्यक दर्शन के काल में असंख्यात गुनी निर्जरा होती है, उसके बाद अगर आपने व्रत नियम ले लिए तो जीवन पर्यंत कर्मों की निर्जरा होगी, वरना अकेले सम्यक दर्शन से तो उसी क्षण भर होकर के फिर रुक जाएगी, फिर नहीं होगी। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि अगर सम्यक दर्शन के साथ हमने व्रत नियम संयम और चारित्र लिया है तो असंख्यात गुनी निर्जरा प्रति समय होती है। ये उसी निर्जरा की मुख्यता को कह रहे हैं कि एक गृहस्थ ने थोड़े से व्रत नियम लेकर के अल्प ज्ञान है और अल्प तपस्या है लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ कर रहा है तो उसका वो अल्प तप और अल्प ज्ञान भी मोक्ष मार्ग में सहायक है। और किसी का 11 अंगों 9 पूर्व का ज्ञान भी क्यों ना हो और किसी ने बाह्य में 5 महाव्रतों को अंगीकार भी क्यों ना कर लिया हो लेकिन भीतर अगर दृष्टि में निर्मलता नहीं आई है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो वो उसका बहुत ज्ञान और बहुत तप भी कर्मों की निद्रा का कारण नहीं है। और कर्मों की निद्रा नहीं होगी तो मोक्ष भी नहीं होगा। ये बात अपने को यहाँ पर समझने की है। पूज्यता और अपूज्यता की दृष्टि नहीं है। पूज्य तो वही है जो कि बाह्य में भी अगर उसने व्रत नियम संयम अंगीकार किए हैं तो व्रतों की ही पूज्यता है। ज्ञान भी उतना पूज्य नहीं है भैया। अगर देखा जाए तो आपने कभी वो घटना नहीं सुनी होगी, मैंने हो सकता पहले सुनाई हो। एक पुरोहित जी थे, बड़े ज्ञानवान थे, राजा के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था और राजा भी उठ करके खड़े हो जाते थे जब पुरोहित जी आते थे। तो एक दिन पुरोहित जी के मन में आया कि मेरा सम्मान जो है मेरे आचरण की वजह से होता, मैं रख ली और ऐसे रखी कि खजांची देख भी ले, चोरी भी करी तो दिखा कर रख ली। खजांची ने सोचा कि शायद इन्हीं की गिर गई होगी, पुरोहित जी हैं थोड़ी ऐसे उठा सकते हैं, और कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर जब यही चीज हुई कि फिर एक मोहर उठा के रख ली तो अब उसका माथा ठनका कि बात क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, इतने बड़े पुरोहित जी हैं, एकदम कैसे इनके ऊपर दोष लगा दें। तो तीसरे दिन जब उठाई तो फिर उससे रहा नहीं गया, पुरोहित जी से तो कुछ नहीं कहा पर अकेले में जाके राजा से कहा कि लगता है पुरोहित जी की नियत अब डोल गई है, एक मोहर रोज दक्षिणा में मिलती है और 3 दिन से एक और उठा करके ले जाने लगे हैं। अब तो बस चौथे दिन पुरोहित जी जैसे ही दरबार में आए तो न तो कोई दरबारी उठा और न राजा उठे, पुरोहित जी आए और सबके बीच से निकल गए, नहीं तो पूरी सभा उठ के खड़ी हो जाती थी, कोई नहीं उठा। राजा की आज्ञा थी आज कोई नहीं उठेगा उनके सम्मान के लिए। और जब पहुंचे समझ तो गए भीतर क्या चाह ही वो रहे थे कि बात पहुंचे वहां तक, और पहुंच गई। और जब राजा नहीं उठे और सिर्फ इशारा कर दिया कि बैठिए पुरोहित जी, आज एक बहुत बड़ा केस है, उसको सुलझाना है आप, तो बिठाल दिया और कहा पुरोहित जी अगर कोई ऊंचे पद पर हो और अगर वो कोई पाप कारी करे तो उसका क्या फल, उसके लिए क्या अपराध का दंड है। तो कहते कोई भी हो, ऊंचे पद पर हो चाहे किसी की पद पर भी हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो कहते तो चोरी के अपराध की क्या सजा, कहते उसके दोनों हाथ अलग कर देना चाहिए जिन हाथों से उसने चुराया। अरे इतनी बड़ी सजा, अगर स्वयं पुरोहित जी हो तो। अब राजा साहब ने स्पष्ट कह दिया कि अगर पुरोहित जी हो अगर तो कहें तो पुरोहित जी तो पहले ही से तैयार थे। बोले कि पुरोहित जी भी क्यों ना हो, उनके भी हाथ निकाल देना चाहिए अगर उन्होंने चोरी का अपराध किया है तो बोले पुरोहित जी इतनी तो आप बात कह रहे हैं और आप ही अपनी बात कहिए ना कि 3 दिन से मोहर उठा रहे हैं। कहले हाँ महाराज, वो तो मैं परीक्षा कर रहा था। कैसी परीक्षा कर रहे थे? यही परीक्षा कर रहा था, मेरे मन में आया कि ज्ञान मेरा पूज्य है या कि मेरा आचरण पूज्य है, तो ज्ञान तो मेरा आज भी ज्यों का त्यों है। 3 दिन में कोई मेरे ज्ञान में परिवर्तन नहीं हुआ, मैं आज भी उतने ही ज्ञानवान हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा आचरण गड़बड़ा गया है इसलिए आज कोई भी खड़ा नहीं हुआ, आप भी मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे ज्ञान का सम्मान नहीं था, मेरे आचरण की निर्मलता का यहाँ पर सम्मान था, मेरे दृष्टि का यहाँ सम्मान था कि मेरी दृष्टि गड़बड़ नहीं है, मेरा आचरण पवित्र है, इसी चीज का सम्मान था, ज्ञान का सम्मान। यही बात यहाँ कही है कि थोड़ा सा भी ज्ञान हो, थोड़ा सा भी आचरण की पवित्रता हो तो वो ज्यादा कार्यकारी है, क्योंकि उसके साथ श्रद्धा है, उसके साथ दृष्टि की निर्मलता है, अपने आत्म कल्याण की फिकर है जिसके लिए, वो व्यक्ति थोड़ा भी त्याग तपस्या कर दे तो कार्यकारी है। और जिसको अपने आत्म कल्याण की फिक्र नहीं, सद्दहदी पत्तहदी रोचेदी पुनो विफासेदी धम्मम भोग निमित्तम नदुसो कम्मक्खय निगत्तम, यही बात कुंद स्वामी ने समय सारजी में लिखी हुई है, इसकी भी व्याख्या ऐसे ही अपन कर लें कि कोई व्यक्ति है जो श्रद्धा करता है, जो ज्ञानवान भी है, आचरणवान भी है, सद्दहदी पत्तहदी रोचेदी पुनो विफासेदी, जिसने अपने उस आत्म तत्व को स्पर्श करने का प्रयास भी किया है लेकिन काय के लिए, कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना, मात्र ज्ञान दर्शन और चारित्र को जिसने अंगीकार किया है, धम्मम भोग निमित्तम नदुसो कम्मक्खय निमित्तम, अगर दृष्टि में कर्मों के क्षय के लिए ये आचरण अंगीकार नहीं किया है, मात्र भोगों के प्राप्ति के लिए किया है, तो फिर वो आचरण और वो ज्ञान वो कोई भी काम का नहीं है। ये बात यहाँ पर समझने की है। हमारी दृष्टि अगर ये है कि मैं ज्ञानवान होऊंगा, मैं चारित्रवान होऊंगा, मैं सच्ची श्रद्धा भगवान के ऊपर श्रद्धा रखूंगा, तो मैं रोज मंदिर आऊंगा तो मुझे अच्छा स्वर्ग का सुख मिलेगा, अगर ये धारणा है तो अभी आपकी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा ठीक नहीं है, आपका अभिप्राय ठीक नहीं है। अभिप्राय तब ठीक होगा जबकि हम इन तीनों के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहें, और कर्मों की निर्जरा तो होती है दृष्टि की निर्मलता आने पर। ये बात जो है यहाँ पर बहुत स्पष्ट अपन को समझनी चाहिए। और इस गाथा का अर्थ ऐसा ही, एक और मेरा मन था कि श्लोक पढ़ लिया जाए, लेकिन नहीं, अब जो है अपना समय पूरा हो गया। क्या समझा अपन ने इस श्लोक से? यही समझा कि अगर हमारे भीतर दृष्टि की निर्मलता है, अगर हमारी श्रद्धा के माध्यम से हमने अपने कर्मों को क्षय कर लिया है या उपशमित कर लिया है या उनका क्षयोपशम कर लिया है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। और अगर हमने अपनी श्रद्धा को निर्मल नहीं बनाया है तो हम कितना भी बाह्य में आचरण करते रहें, फिर भी वो आचरण हमारे कर्मों की निर्जरा में सहयोगी नहीं है। और हमको कर्मों की निर्जरा तो जरूर से करनी है, इसलिए अब हमने जो ज्ञान के और आचरण अपना जीवन में अंगीकार किया है उसके साथ अपने अभिप्राय को भी हम निर्मल बनाएंगे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।